इस पर भगवान मुस्कुराए और कहे, बुआ जी आप जादवों में स्नेह बंधन नहीं रखना चाहती हैं, तो मैं भी तो एक जादव हूं ना, क्या हमसे भी स्नेह निवृत्ति चाहती हैं क्या? क्या आप चाहती हैं कि हम भी स्नेह न रहे? तो नहीं नहीं नहीं, त्वयि मे नन्य विषया मति मधुपते सकृत गति मूल बहता दधा गंगे वहुदमती। हे मधुपते, हे जादव पते, हे जदुवंश विभूषण, मेरी मति सदा आप में लगी रहे और निर्वरोध, कोई भी अवरोध कोई भी बाधा आवे पर मेरी मति आपसे कभी न हटे। जैसे गंगा जी हिमालय से निकलकर समुद्र की तरफ बहती है और कोई बाधा आती है, कोई पत्थर पड़ता है तो और उछाल होने लगता है, गंगा जी जैसे अपने प्रवाह से निरंतर समुद्र की तरफ बहती है, इस तरह से मेरी मति त्वयि रति मुद्बहता, आपके प्रति प्रेम बढ़ता जाए, मेरे मन में प्रेम बढ़ता जाए और निरंतर किसी भी काल में हमारा प्रेम आपके प्रति शिथिल न हो। इस संसार में देखा जाता है कि कोई किसी से प्रेम करता है लेकिन कुछ कुछ काल के बाद प्रेम खंडित हो जाता है, पल धीरे धीरे कम होता है, कम होते होते खत्म। लेकिन कुंती महारानी प्रार्थना कर रही है कि आप में हमारी मति उस तरह से निरंतर लगी रहे जैसे गंगा जी अपने जल प्रवाह से निरंतर समुद्र की तरफ बहती रहती, तो आपकी तरफ ही हमारा चित्त रहे, चित्त की वृत्ति रहे, कभी भी आपसे न हटे, आप में ही निरंतर लगी रहे, ये प्रार्थना करो। और इसके बाद भगवान के बहुत से गुणों का स्मरण करके उन्हें नमस्कार कर रही है अंतिम श्लोक। तो यहां पर कुंती महारानी के विचारों में बहुत ऊंचाई निचाई है और बहुत अप डाउन स्थिति लगती है। कहती हैं कि आप यहाँ रुक जाइए हमारे पुत्रों के लिए, हमारे लिए, फिर कहती नहीं, हमारे पुत्रों से हमारी ममता हटा दीजिए। अद्भुत प्रार्थना है कुंती महारानी, हमारे नैहर के लोगों में किसी में हमारी ममता ना हो, स्नेह ना हो, और अर्जुन आदि पांडवों में भी, मेरे पुत्रों में भी हमारी ममता ना हो, मेरी ममता की धारा केवल आपके चरणारविंद में रहे और किसी तरफ में। ये सब प्रार्थनाएं बहुत ही विचारणीय हैं, क्यों अपने स्वजनों से स्नेह निवृत्ति चाहती। वास्तविकता ये है कि जो देह का संबंध है इस संसार में, यह व्यक्ति के भगवत प्राप्ति में बहुत बड़ा बाधक है। हमेशा अपने स्वजनों की चिंता करना, ये करना, वो करना, जबकि माया के प्रवाह में कहीं जन्म मिलता है तो कोई पिता हो जाता है, माँ होती है या बच्चे होते हैं, कुछ ही दिन के बाद ये सब छूट जाता है, ये सब अनित्य है, क्षणभंगुर है। लेकिन जीव इन सब संबंधों में पड़ करके भगवान को पूर्णतः भूला रहता है। और देखिए संसार में जितना अपने परिवार के लिए चिंता होती है, आदमी क्या क्या नहीं करता है, क्या भगवान के को पाने के लिए, भगवान की सेवा के लिए इतनी व्याकुलता होती है? नहीं होती। अपने परिवार के लिए भोजन आदमी खुशी से बनाता है, लेकिन भगवान के लिए बनाने में पहाड़ उठाना पड़ता है। कभी कभी तो लोग भोजन बनाते हैं, यह कहा जाता है ठीक है आप अपने लिए भोजन बनाइए, लेकिन उसको भगवान के पास ले जाकर के भोग लगाइए, तो इतना भी उन्हें भारी दंड जैसा लगता है। भोजन बनाने में मेहनत नहीं पड़ा, बर्तन मांजने में और सब करने में, और भगवान के पास ले जाकर के अर्पण करने में उनकी कमर टूट जाती है, इतना भारी पड़ते है। और जो महा आलसी है और अज्ञानी है तो लोग कहते हैं अरे क्या खिलाना है भगवान को, क्या खिलाना है, भगवान खाते नहीं है, कैसे खाएंगे, वो निराकार है, उनको न हाथ है न मुंह है न पैर है, खाएंगे कैसे? इस फिलॉसफी से ये आलसी लोग बच जाते हैं, उनको पूजा करने की जरूरत नहीं पड़ती, बस टाइम से चाय पी लेंगे, अखबार पढ़ लेंगे और कहेंगे हम बहुत बड़े अध्यात्मवादी। ये आलसियों का सिद्धांत है। राम नाम में आलसी, भोजन में होशियार। भगवान का नाम जपने को कहा जाए, प्रणाम करने को, तो ऐसा लगता है कि उनको पहाड़ उठाना पड़ता है, लेकिन भोजन का समय आता है तब घड़ी देख कर हाँ टाइम हो गया भोजन। भोजन करने में बहुत होशियार। वैष्णवों को क्या कहते हैं, अरे तभी आप लोग जप कर रहे हैं जब भोजन मिल रहा है, भोजन नहीं मिलेगा तो देखा जाएगा कितनी भक्ति करते। लेकिन देख सकते हैं कि जो भक्त हैं वो एकादशी के दिन भी जप करते हैं, बल्कि और दिन से ज्यादा करते हैं। भूखे रहते हैं तब भी भजन करते हैं, खा करके भी भजन करते हैं। और ये आलसी बुद्धू लोग तो चार चार बार खा करके भी भगवान का भजन नहीं करते। कोई ऐसा कहे कि तभी तक आप लोग भगवान का भजन कर रहे हैं जब तक भोजन मिल रहा है, तो उसे पूछना चाहिए कि और तुम स्टार्विंग कर रहे हो, खाने को नहीं मिल रहा है क्या, खा करके करो। उसको तो केवल टालना है, न खा करके करना है न उपवास करके करना है। जिसको भजन करना है तो एकादशी को भी भजन करेगा, उपवास में भी और खा करके भी करता है, करना है ना। ये बात मैं कैसे ला दिया, मेरा मन भूल गया। हाँ, मैं ये कह रहा था कि देह का संबंध इतना बलवान है, भ्रामक है, व्यक्ति अपने संबंधियों के लिए भोजन पकाता है, खिलाता है, सब करता है, लेकिन भगवान के लिए चाहे किसी दिन साधु के लिए बनाना पड़े तो लगता है कि एक साधु 100 आदमी के बराबर मेहनत लेगा खिलाने। कई लोगों के मैं स्थिति को देखता हूं, देह का संबंध ही भगवान के बाधक में, भगवान की प्राप्ति में बहुत बड़ा बाधक। कुंती महारानी इस दृष्टि से बोल रही है, जैसा मैं पहले कहा कि यद्यपि अर्जुन आदि पांडवों के साथ जो संबंध है और जादवों के साथ जो संबंध है कुंती महारानी का, वास्तव में वह कृष्ण के ही कारण है, परंतु वे विचार कर रही हैं, वो सोचती हैं कि भाई के साथ संबंध, पिता के साथ संबंध या भतीजों के साथ संबंध और अपने पुत्रों के साथ और हस्तिनापुर के अन्य लोगों के साथ जो हमारा संबंध है, कोई भी संबंध मैं कृष्ण पर आधारित जानना चाहती हूँ। कृष्ण के कारण हमारा किसी से प्रेम होना चाहिए, कृष्ण को शून्य करके मैं, आगे के श्लोकों में बात आएगी। ठीक है, स्नेह रहे किससे, जो कृष्ण का भक्त है उससे। मेरा भाई है, मेरा पिता है या मेरी माँ है या मेरे पुत्र हैं, यह मान करके देह पर आधारित प्रेम हमें नहीं चाहिए। वह कृष्ण का है, कृष्ण का भक्त है, कृष्ण की सेवा कर रहा है, इसलिए हमारा प्रेम प्रिय पात्र है, यही वह चाहती है।